ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय 30 श्लोक संख्या 50 और 51। बोर्ड में कौन सा लिखा है? दोनों लिखा है। यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनाङ्गृचा सयोपादत्तदक्षाश्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षायाम् अनादिर्भिश्च च युयुजो युयुजेयांश्च स वै सर्वप्रजापतिन्। यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनाङ्गृचा स्वयोपादत्तदक्षांश्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्।
शब्दार्थ या जो जायमानः अपने जन्म के तुरंत बाद सर्वेषां सबों का तेजः कांति तेजस्विनां चमकीला ऋचा तेज से स्वया सकाम कर्म में दक्षम दक्ष अब्रुवन कहलाया। आप लोग थोड़ा और आगे आगे आ जाइए, पीछे से बैठ सकते, बहुत जगह है सामने, कम फरवा, बहुत जगह है सामने आ जाए। तम उसको प्रजा सारे जीव सर्ग उत्पन्न करते हुए रक्षायाम पालन कार्यों के लिए अनादि प्रथम जन्म ब्रह्मा अभिसिंच्य नियुक्त करके च भी युयोजो लगाया युयोजे लगाया अन्यान दूसरे को च तथा स वह वै निश्चय ही सर्व प्रजापतिन सभी जीवों के जनक को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबों की शारीरिक कांति को ढांप दिया। क्योंकि वह सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु या दक्ष था, इसलिए उनका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया। तात्पर्य, दक्ष ब्रह्मा के ही समान शक्तिशाली बन गया, फलतः ब्रह्मा जी ने उसे प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि तथा अन्य प्रजापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत रचिताओं के कार्यकलाप नामक शीर्षक अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बस इतना ही है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो ये चतुर्थ स्कंद लगभग एक ही अध्याय बाकी है, अंत हो ही गया। इसमें इस अध्याय में अंत में ये जो दो तीन श्लोक में आप पढ़े, आज भी दो श्लोक है, उसमें ये बताया गया कि जो दक्ष प्रजापति थे, पहले प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु के मन्वंतर में जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष थे, मुख्य प्रजापति थे, वही इन सठा मन्वंतर में चाक्षुष मन्वंतर में इन 10 प्रचेताओं का बेटा बन करके पैदा हुए। काल श्लोक में आप सुने होंगे इस बात को, वही पैदा हुए। और इस श्लोक में बताया गया वो जैसे पैदा हुए थोड़ी देर में, मतलब जैसे उनके थोड़ा बड़ा हुए, बालकपन घटा किशोर अवस्था आया उनको, तो आपने तेज से बाकी सारे देवताओं को प्रजापतियों को अभिभूत कर दिए, ढांक दिए, आपने तेज से अभिभूत कर लिए। और उसके बाद में उनके कार्य कुशलता ऐसा था, इतने हर काम करने में निपुण थे, उनके पटुता उनके निपुणता को देख करके ब्रह्मा जी उनको ये पोस्ट दिए, आपका नाम दक्ष है, आप एक्सपर्ट है। और केवल नाम नहीं दिए, काम भी दिए, बोले तेरा काम क्या है ना, तू अब डिपार्टमेंट हेड बन जा प्रजापतियों का, प्रजा उत्पन्न करना, उनको पालन करना, ये दोनों डिपार्टमेंट के एचओडी बना दिए ब्रह्मा जी ने। क्योंकि ब्रह्मा जी देखे, यहां कहा गया कि ब्रह्मा के समान शक्ति ऐश्वर्य वाली हो गया उन्होंने, ये दो श्लोक में ही बताया गया। तो ऐसे कहते हैं कि दक्ष दोबारा जन्म लिया। किसी का मन में प्रश्न उठ सकता, दोबारा क्यों जन्म लिया, क्या बात है? और फिर इस ऐश्वर्य, जब इतने प्रतिभाशाली, इतने ऐश्वर्यवान, तेजस्वी था, फिर उनको दोबारा जन्म लेना क्या पड़ा? भाई वो तो इतने बड़े ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली है, तो ब्रह्मा तो कभी वापस आते ही नहीं, वो तो जाते हैं ब्रह्मलोक से ऊपर, वो फिर रिटर्न बैक क्यों हुआ? मन में कई विचारे आता है। तो उसमें अगर आप इस चतुर्थ स्कंद में पहले आप पढ़े होंगे
जिस समय शुरू शुरू में जब सती दाह की संवाद आया था, उस समय में भगवान शंकर को, भगवान शंकर उनके जामाता थे, उनके ज्वाई थे, दक्ष के सबसे छोटे बेटी सती, उनको ब्रह्मा जी के कहने पर वो शंकर जी को शादी दिए थे, लेकिन तभी भी डिपार्टमेंट हेड थे दक्ष जी। तो एक बार उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ आयोजन किए थे, सारे प्रजापतियों को बुलाए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी सब आए थे, ऋषि मुनि ब्राह्मण, और ब्रह्मा जी भी सभा में उपस्थित थे, उनके पिताश्री भी बैठे थे। बहुत बड़ा भारी यज्ञ मीटिंग का आयोजन था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग था। तो उसमें दक्ष को पता चला, दक्ष वासदी क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी था, MC था वही। तो उन्होंने सबों इन्वाइट किया था सभी को, तो उनको टाइम पता था, लेकिन उन्होंने देखा कि सभी लोग आए हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे ड्रेसिंग पेंडिंग होकर जाओ ताकि लगे कि अपना बढ़िया सा चुने हुए ड्रेस फेस पहन करके अब अपना प्रभाव के साथ उन्होंने आया। और जैसे सभा भवन में दक्ष जी प्रवेश किए, तो केवल उनके पिता ब्रह्मा को छोड़ करके बाकी उपस्थित जितने ऋषि मुनि प्रजापति बड़े बड़े पदाधिकारी सदस्य बैठे थे, देवतागण सब खड़े हो गए, उनके इतने तेज था, उनके प्रभाव को देखकर सब खड़े हो गए। अब था भी डिपार्टमेंट हेड, बड़े आने से तो सम्मान के लिए सब खड़े हो गए, यद्यपि उनके उम्र में कई बड़े होंगे, योग तपस्या में कोई बड़े होंगे, लेकिन उनके पोस्ट के कारण सब खड़े हो गए, हजारों संख्या में भीड़ था, सब खड़े हुए। और दक्ष ने देखा होगा, पहले पिताजी की थोड़ा प्रणाम कर लिया होगा, और बाकी सबको जैसे तैसे सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं सर कर, लेकिन सबको देखते देखते नजर पड़ गया भीड़ के अंदर श्री महादेव जी ने, वो बैठे थे चुपचाप, हजारों लोग खड़े हुए थे, उनके बीच में नजर पड़ गया, वो बैठा है, उठा नहीं, बस दैट्स इट। इतने में ही इतने फर्क पड़ गया, सारे उनका वेशभूषा, उनके सारे सभा के तैयारी कार्यक्रम, इतने सारे व्यवस्था सारे मिटिया मेट के पानी फिर गए, जस्ट इतने में ही। इतने से उनको इतने अफेंड फील किया, ये सभी उठे, ये नहीं उठा। अरे भाई, ना उठने का कई कारण हो सकता है, उनके पैर में चोट लगा होगा, कुछ हो सकता है ना, ये हो सकता है, ऐसा थोड़ी सा कोई पिचका लेंगे कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं सोचा। अब इतने उनके अंदर गुस्सा आया, क्रोध, अब क्रोध आया, उसको देख करके मेरा अपमान, ओ कुछ मास्टर श्रीमनी था, कुछ नहीं कंट्रोल कर पाया, इतने गुस्सा आया, थर थर कांपने लगा, संतुष्टि नहीं हुआ, हजारों लोग उनके रेस्पेक्ट के लिए सम्मान के लिए खड़े हुए, इससे उनके मन नहीं भरा, ये उनके खड़े नहीं हुए, क्यों बोलता है कि देखो, अब तुरंत माइक ले लिया, हाथ में घोषणा करने लगा, देखो मैं बोलने जा रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं कुछ क्रोध में बोल रहा हूं, पूरे क्रोध में मैं क्रोधित होकर कुछ बोल रहा हूं, आक्षेप कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं नीति वाक्य बोल रहा हूं, आप लोग सब बड़े बूढ़े सब बैठे हैं, मैं जो धर्म नीति बता रहा हूं, आचरण नीति, नीति के दृष्टि से देखिए, ये ऐसे कुरूप है, कोई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन क्या करूं, पिताश्री केवल आपके चलते, आपके कहने से मेरे मृग नयनी बेटी को, छोटी बेटी को उनको दे दिया, बताओ, वो मेरे दामाद है, छोटी दामाद है। अब देखो, ये सारे खड़े हुए, उठा तक नहीं, सभा में बदनाम कर दिया मैंने, यही व्यवहार है, ये नीति है, यही आचरण है। तो ये फिर महादेव है सर, देवताओं का डिपार्टमेंट में हेड बन रखा है, कैसे हो सकता है। तो ऐसे गाली गुलस दे करके अपमानित किया, एक से एक कटु वचन बोलने लगा, तो बोलता है कि मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, क्रोध में नहीं बोल रहा हूं, पूरी क्रोध में भरपूर करके बोल रहा था, सारे बोल रहे थे क्या हो रहा है, शंकर जी बैठे थे, वो भी सब सुन रहे थे, चुपचाप बैठे थे, अब कुछ फर्क नहीं पड़ा था। आपको कभी कभी आप किसी के अंदर झगड़ा तो किए होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि हम तो कलयुग झगड़ा लो आदमी है, जब किसी के साथ झगड़ा करते होंगे, गाली देते होंगे, जिसको गाली देते होंगे झगड़ा करते होंगे, वो कुछ नहीं बोलता, थोड़ा हंस देता है, चुपचाप बैठेगा, तो क्या होगा, आप चुप हो जाएंगे, डबल गुस्सा होगा, बोलिए डोज काम नहीं कर रहा है, मैं इतने डोज दिया कुछ कर नहीं रहा काम, थोड़ा एक्स्ट्रा जोर देना पड़ेगा, तो डबल डोज और गाली देंगे, फिर भी नहीं, अरे ये भी नहीं काम कर रहा है, और गुस्सा होंगे,
आपके गुस्सा तो जितने लिमिट है इतना तक बढ़ते चला जाएगा, और जब कुछ नहीं करे लास्ट में हार के बोले बेकार पागल है कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसे शंकर जी तो कुछ उनके कुछ आँच नहीं पड़ा, वो खूब गुस्सा हुआ तम तम तक खूब उठा पैर ना नाच कूद किया गाली गुलज किया, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं फर्क पड़ा, अंत तो देखा ये बेशर्म कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उनका फुल पोटेंशियल लगाकर अभिशाप दे दिया। अभिशाप देने के बाद निकल गए वहां से गुस्से में, इतने गुस्सा था वो खड़ा नहीं हो पाया, प्रोग्राम कैंसिल। हजार लोग आए होंगे उनके बैठने रहने का गेस्ट हाउस बुकिंग खाना पीने व्यवस्था हुआ होगा सब कैंसिल, जाओ सब प्रोग्राम ही कैंसिल। ब्रह्मा जी बोले क्या करे, चलो रिटर्न टिकट नहीं था, इमरजेंसी करके गए होंगे सब जो करके। शंकर जी तो चले गए उठ करके, वो लेकिन वो चला जाने के बाद गए और शंकर जी के पार्टी के लोग खड़े हुए, वो कैसे सहन करेंगे भाई उनके नेता को इसी गाली दे रहे। तो उनका और दक्षिण के ग्रुप का दोनों ग्रुप के अंदर भी झगड़ा चला। तो जो भी हो शंकर जी को भरी स्वभाव में उन्होंने अपमानित किया, शंकर जी कुछ नहीं बोले थे। तो इसके फलाफल क्या हुआ था, यही है वैष्णव अपराध। इतने बड़े पोस्ट था उनका, प्रजापति के अध्यक्ष था, ब्रह्मपुत्र था, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन केवल इतना छोटा सा, अरे इतने लोग आपको सम्मान किए एक नहीं किया, थोड़ा पता करना था क्या हुआ जा करके, आपके दमाद है पूछना था कोई ठीक ठाक एक नहीं किसे हो गया ना, पूछ कर पब्लिकली उनको अफेंड किया अपमान किया, वो तो कुछ नहीं उनको तो फर्क नहीं पड़ा। उसके कारण क्या हुआ, वैष्णव अपराध के नतीजा में उनको प्रमोशन हो गया, इमीडिएट गॉट प्रमोटेड। अब जो उनका पोस्ट था ना उसमें तीन डबल पोस्ट ऊपर उठ गए, ब्रह्मा जी ने पोस्ट बड़ा चढ़ा दी उन्हें, तब तो उनका से बोल करें बोला और क्या आप करके, और तुरंत दूसरा यज्ञ किया, तीन लोग से सभी को इन्वाइट किया और उनको इन्वाइट ही नहीं किया। अरे ज्वाई का तो दामाद का तो हक बनता है कि ससुर के घर में कोई काम हो उनका शेयर बनता है, लेकिन उनको इन्वाइट ही नहीं किया, यज्ञ भाग से उनको वंचित किया। शंकर जी बोले ठीक है जो करना है करे मैं क्या करूं। तो इस बार ब्रह्मा जी भी नहीं आए, बोले नहीं गड़बड़ व्यापार है ये गड़बड़ अपराध कर रहा है हमने, जहाँ भले अधिकारी बढ़ गया। तो देखिए इसमें शिक्षा मिलता है, कोई अगर भक्तों के चरण में अपराध करता है तो उसका तुरंत परिणाम क्या होगा, अरे अभी इसे दिखे ना आपने, तुरंत परिणाम यह होगा कि आपके पोस्ट पोजीशन और आपके कमाई दमाई बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये उसका तुरंत प्रभाव। जिनका प्रमोशन होता है, जिनका धन ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्त होता है, मान सम्मान बढ़ता है, मानो कुछ गड़बड़ है। एक महापुरुष मुझे बता रहे थे, बोले पानी में नदी में नौका चलता है, तो नाविक जो नौका चलाता है अगर कहीं थोड़ा सा छेद पेद हो नौका में पानी अंदर घुसा तो अच्छा बात है, क्या करेगा दोनों हाथ में पानी उठाकर फेंकेगा, जब पानी निकालेगा तो नौका लाइट हो जाएगा चलेगा ठीक ठाक चलेगा, तो पानी जब बढ़ते जाएगा तब तो भारी वो डेंजर है, डूब भी सकता है उनके भारी में। ठीक इससे नौका में पानी घुसने से दोनों हाथ से उठाकर फेंक देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा जीवन में धन आने लगा तो समझो यही हमको डुबाएगा, उसको भी दोनों हाथ में दान कर देना चाहिए, अगर उसको भी रखा वो आपको ले डूबेगा मझधार में। हाँ अगर इसे पद पद पर ऐश्वर्य धन आया तब समझो ये गड़बड़ी है, लेकिन हमको तो बड़े मीठा लगता है, हम नहीं करते हैं और इसी के कारण जाते हैं, सब इसी कारण जाते हैं। तो उनको धन मत बहुत बढ़ गया, बड़े पद मत बहुत बड़ा पदवी था, ऐश्वर्य था, और आपने शंकर जी को नेग्लेक्ट करके यज्ञ किया, भारी यज्ञ किया, यहाँ तक कि आपने बेटी को जो अपने बहुत लाडली थी उनको भी इन्वाइट नहीं की, वो तो बेचारे सुनी सुनाई देख करके बहुत शंकर जी को बोला, शंकर जी समझाए उनको, बोले देखो हमको इन्वाइट नहीं किए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी सती ने, उन्होंने पहले तो नहीं मानी, आकर बोला नहीं चलना चाहिए क्या करूँ बुलाए नहीं, फिर वो कहीं से किताब देख के आया होगा पता नहीं, आकर बोला आप ही नहीं तो बचा रहे थे ना क्या ना, अगर पिता के घर में पिता माता हो गुरु हो और निकट संबंधी हो अगर वो इन्वाइट नहीं करते तभी जाना चाहिए, उनको इन्वाइट क्या करें ना, हाँ बात आप सही कह रहे हो,
नहीं कर उनके इन्विटेशन की जरूरत नहीं, जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जाने से अनुक्रोध बढ़ेगा, ये कुछ और कारण है ना, क्यों वो भूल गए होंगे कार्ड भेजने, एड्रेस मिस किया होगा, फ़ोन नहीं किए, कुछ भी किए, चला जाना चाहिए, इसमें क्या है, हम बेटी है हम ना, नहीं 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 ये ऐसा नहीं, जानबूझ गलती हो गया, जानबूझ करके नहीं किए, किए नहीं उन्होंने, और जाने से उसका परिणाम न क्यों। तब शंकर जी ने देखी, इतनी बड़ा इंसिडेंट हो गया था, उनके ससुर के साथ बहुत भारी झगड़ा हो गया था, मीडिया एक्सप्लेन में बहुत बड़ी भाड़ काम हो गया था, सती जी के पास तो ईमेल फीमेल नहीं था, तो इसे पता नहीं था, उनको भी नहीं बताए थे शंकर जी कि आपके पिताजी के साथ हमारा इतने बड़े हो गया कर घटना, नहीं बताया। आज जो सती जी ने जिद की तो उनको बताने लगे, नहीं जाने, बोले आपको पता नहीं, गड़बड़ है ना क्या ना, वो मेरे ऊपर बहुत क्रोध किया, मेरे ऊपर उनका बदला क्यों, तब उन्होंने घटना बताया, बोले बताने था ये घटना बहुत साल पहले की बात है, ऐसे ऐसे हुआ था, अब मैं सभी उठे जैसे तेरा पापा जी आए, अब मैं उठा नहीं, तब इसके कारण में इतने गुस्सा आ गया कि क्या बड़बड़ बोलने लगे सब, अब मैं तो कुछ नहीं बोला, बाकी फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, मुझे अभिशाप दे दिए, तो उनसे तो बस पूछे तो गया, फिर और उनका प्रमोशन हो गया, मैं चुप बैठा, अभी इस बार तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जानबूझकर नहीं बोले, और यज्ञ इसलिए किए मुझे अपमानित करने के लिए, उसका मेन प्रोजेक्ट यही है और कुछ नहीं। सती जी को बड़ा बोल लगा, बोला ये घटना मुझे बता दो, थोड़े सोचकर बोला आप भी ऐसे ही है, पापा आए थोड़ा खड़े हो जाने से क्या हो जाता, आप क्यों नहीं खड़े हुए, आप भी है, हमारे पति दिया हुआ, हम छुट्टी खड़े हुए, सम्मान करना चाहिए बड़ों का, वो आपके पापा हैं, ससुर साहब है, बोले कौन बोला मैं सम्मान, मैं तो सम्मान किया, मैंने भरपूर सम्मान किया, लेकिन मेरे सम्मान करने का तरीका दूसरा है, उनको उनको पता नहीं है, वो सम्मान पाने का इच्छा उनका दूसरा था, मैं मेरे ओर से कर रहा था, जिस प्रकार करना चाहिए मुझे जो आता है इस प्रकार से मैं कर रहा था, भली प्रकार से किया, लेकिन उनको नहीं समझ में आएगा मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा नहीं क्या सम्मान किया था, मैं पूरा सम्मान किया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, है ना, नहीं ये कौन सा भाषा में बोला, ये कौन सा भाषा समझ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आया तो क्या हो। एक बार की घटना मुझे याद आता है, एक गांव में एक बिचारी एक शूद्राणी थी, वो दूसरे के घर में काम कर रही थी, गरीब थी, अनपढ़ थी, जो आदिवासी औरत होता ना इसी प्रकार की थी, आदिवासी की थी, घर में काम करती थी दूसरे घर में, तो उनके गांव में एक बार कुछ साधु संत लोग आने लगे, बड़े बड़े साधु संत, तो गांव वाले बोले अब साधु संत आ गए रहेंगे, उनके कौन सेवा टवा करेगा, हमारा सब एक बार बिजनेस है, तो उस आदिवासी जो काम करने वाली है उनको बोले देखो वो सब आएंगे, उनको आप हम घर पर व्यवस्था करते हैं, आप उनका देखभाल करना, हम पेमेंट कर लेंगे हमारा टाइम, हाँ ठीक है मुझे तो कमाई चाहिए, जिसके सेवा करूँ उनका सेवा कर दूंगी, मुझे क्या, बोले देखो साधु लोग हैं हम जैसे नहीं हैं, उनके साथ बहुत सम्मान के साथ आप सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, गुस्से हो जाएंगे वो ना, फिर कैसा सम्मान कैसे करते हैं ना, देखो जैसे पहुँचेंगे ना तुरंत जा करके साड़ी के ऐसे गले में डाल करके ऐसे पंचांग में प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, घुटना टेक करके अब बोलना हे संतगण आपके चरण में जुहार है, आपके श्री चरण में जुहार है, ऐसे बोलना प्रणाम करना, तो बोले ऐसा करना फिर इस प्रकार सम्मान सेवा करना, बोला श्री चरण में जुहार, चरण क्या होता है, वो क्या होता है उनको तो पता ही नहीं था, नहीं क्योंकि पैर को पैर नहीं हो तो आदिवासी रहते वो खुरा बोल रहे थे, सो गाय भैंस पशु पक्षी साथ थे खुरा, तो उनको बोले नहीं पैर को उसी खुरे को उसी को चरण बोलना चाहिए ना, हाँ इसी को देख करके उसको हाथ जोड़ के इसी चरण प्रणाम करना, तो उसका हो नहीं रहा था, तो हफ्ता भर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस कर रहा था, मेंटर कर रहा था, लेकिन क्या करे जो जीवन भर नहीं हुआ कोई जाना तो कैसे होगा, आप जैसे कर, आज साधु लोग आ जाएंगे तो चाहते हैं हार्ट बीट बढ़ रहा था, आज मुझे बोलना है किसी बोल के प्रणाम करूँ सम्मान करूँ, अब देखते देखते साधु गण आ ही गए उनको बोले जाओ प्रणाम करो सम्मान करो उनकी सेवा करना है, तो गया सामने उनको जा करके प्रणाम किया और भूल गया, जो प्रैक्टिस किया था भूल गया बेचारा, क्या बोलूँ क्या बोला था याद नहीं आया, और जो उनका स्वभाव जो बोलना था वही बोला, पर हे गोसाईगण आपके खुरा को जुहार है, आप तो वो चरण जानता नहीं था, चरण से बोलते बहुत याद किया, याद नहीं आया बोल के, फिर जो अपना स्वाभाविक भाषा बोल दिया,
तो उनको बोले यारे ये किसी को भेज दिया, निपट मूर्ख है, हमको पशु समझ रहा है, हमारे खुर है, हमको पशु मान रहा है, क्या बोल रही हूं ना आपके खुरा में जो हार है दो बार है, हमारे खुरा बोलते हम मनुष्य नहीं हम पशु हैं, जानती है तू नरक जाओगे, इस प्रकार का अपमान के कारण अव्यवहार कर तू नरक जाओगे। वो बेचारे उठकर बोलते हे गोसाई ये नरक फरक है, इतने बड़े काम मैं कहा, मैं तो काम करने वाली औरत है, आप जैसे महापुरुष ना जा सकते हैं, मैं कहां जाता हूं, मैं कहां देखा इस नरक जैसे लोग, बाप रे मैं तो यही काम करती हूँ बात सही जानती हूँ, आप जैसे बड़े बड़े सब संत महापुरुष गण आप जा सकते नरक लो, मैं कहां जा। वो बेचारी स्वभाव सुनते वो जानती नहीं नरक क्या, वो अपने बोल उनको सुन करके और क्रोध होते हैं, तू निश्चित नरक जा, हाँ हाँ निश्चित, आप बोलने से मैं योग्य नहीं, आप ही योग्य हो सकते हैं। अब करे क्या बेचारी, वो इतने सिंपल हार्टेड थी, यही होता है। तो इस प्रकार आपने स्वभाव के अनुसार जो सम्मान करे और जो नहीं समझ पाए उनका दोष है, उनका क्या है। तो शंकर जी बोले मैं अपने हिसाब से पूरा सम्मान कर रहा था लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे सूर्य जी के जो भी हो झगड़ा झटी हुआ समझाए तो सती तो गई, लेकिन जो हुआ आप जानते हैं, झगड़ा हुआ फिर वो अपने आत्मदाह कर डाली, जो भी हुआ झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा उतार के, वीरभद्र जा करके खूब मारपीट हुआ, बड़े तांडव रच गया, दक्ष को तो वहीं से बिहेडेड करी, उन्हें गला चप करके, वो कट नहीं रहता, उनका गला कट भी नहीं रहा था, वो बलि अस्त्र से काट करके उन पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके खत्म कर दिए, उनको मर्डर कर दिए, सब कर दिए। और सारे ब्राह्मणगण, किसी का दाढ़ी नोच गया, किसी का दांत निकल गया, किसी का हाथ निकल गया, बड़े से मंत्र तंत्र जो कर रहे थे सारे के कहाँ चेचा से भागे से हॉस्पिटलाइज। अब सब जा करके देवता ऋषि बोले देखो इतनी बड़ा पूजा हुआ था ऐसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को ले करके, शंकर भगवान बड़े गुस्से में थे, उनके पास गए कैलाश में, जाकर उनको तृप्त किए, तृप्त करके शंकर जी आशुतोष हैं, थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से इनको अव्यवहार से गुस्से हुए थे, लेकिन बोले देखो मुझे क्या तो ऐसे किया, मुझे थोड़ा खराब लगा, सत्य कोई बात नहीं ना, चलिए आप प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, चलो शंकर जी आए फिर पर्सनली जिस यज्ञ स्थल को टट्टी पिशाब करके मार पीट करके सारे सब लोह लुहान करके फेंक दिए थे, वहीं पर ब्रह्मा जी देवता ऋषिगण शंकर जी को साथ में लेकर गए। शंकर का नाम ही शिव है, शिव मतलब मंगल, इतने मंगल में हो, आकर पहुंचते ही तुरंत ऐसे व्यवस्था किए, उनके आक्षण से तुरंत क्षेत्र सब शिवगण साफ सुख करके बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी एक्टिव हो गया, सफाई करके चकाचक। बोले लेकिन किसी का बोला मेरे दांत निकल गया, वो दांत लग गया, किस लिए दांत चाहिए, चुबाऊंगा दूसरे दांत से चुबा लेगा, मेरा मूंछ चला गया, मेरा आंख चला गया, सब व्यवस्था ठीक ठाक कर दिए। बोले जो मुख्य कर्ता यज्ञ का होता गला ही नहीं है, सर ही नहीं है उसका। बोले सर कहाँ गया, सर को तो स्वाहा कर दिए थे, जला दिए थे। बोले कैसे जोड़ूं, देखिए आजकल कितने बड़े हाईटेक हॉस्पिटल बड़े बड़े हो, लेकिन वो सर काट दिए थे, अब हफ्ता दस दिन के बाद कोई सर लगाकर जोड़ सकते हैं, आईसीयू लेने का जरूरत नहीं पड़ा, वहीं पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था, सर तो जल चुका था। बोले कोई बात नहीं सर नहीं दे, किसी का सर एक ले आओ। तो एक बकरी सोया था उत्तर दिशा में, तो बकरा के सर को काट के ले आए, वो शंकर जी ने जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया ऑन द स्पॉट, मैं करके उठा। अब भाई भले शरीर मनुष्य का हो, भाई मुंह तो बकरा का हुआ ना, तो आवाज तो मुंह से निकलेगा, हाथ पर से तो निकलेगा नहीं, हाथ पर मनुष्य का था, मैं मुंह जो था कैसा था बकरे का था, तो उसी में मैं अहंग ममती करने लगा। जब करने लगा तो बोले चलो जीत गया, जब देखा कि जी करके जी शंकर जी को मैंने अपमान किया था, इसके कारण मेरा सब ये हुआ था, ध्वस्त विध्वस्त मर गया ऐसा हुआ था, अब उनको अकल आया, जा करके दंडवत किया, बकरा सिर से खूब दंडवत किया, मैं किया और स्तुति किया, और शंकर जी क्षमा कर दिए, तो नो प्रॉब्लम कोई बात। ब्रह्मा जी तो फिर उन्होंने शंकर जी को भली प्रकार से स्तुति की, पर छुआ माफी मांगा, बोला मैं जगह करो। तो उसी बकरे सर लेकर के कर्ता रूप में बैठा, पता नहीं मीडिया लोग अगर फटाफट तो लिए होंगे जरूर, माला पहनाए होंगे जब किए होंगे,
और जिस हिसाब से मंत्र फंत्र पढ़ा जो भी करके यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब ध्यान किया यज्ञ सर्व विष्णु भगवान विष्णु पधारे। पहले बार यज्ञ तो फटो लगा कर किए थे, इस यज्ञ में जैसे भगवान को आवाहन किया गया भगवान विष्णु स्वयं पधार गए यज्ञ स्थल में। और ये उसको देखकर तो सारे यज्ञ के उपस्थित बड़े बड़े देवता ऋषि खड़े हो गए, भगवान को बड़े स्तव स्तुति चलने लगा, सफल हो गया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो यज्ञ सफल हुआ, सब हुआ, ब्रह्मा विष्णु है सब अपना अपना पूरा यज्ञ लेकर के सफल करके गए। और उसके बाद तो फिर अपने पोस्ट पर आ गया, लेकिन राजा बन गया, राजा बन गया भाई, उनके पत्नी लोग उनके बेटी जो उनके घर सब आए होंगे, लेकिन कोई आए होंगे उनको प्रणाम कर रहे होंगे, लेकिन वो क्या फील करता होगा, कोई पास में आकर बैठेगा, भाई बकरा का सर है ना, आप थोड़ा अनुमान कीजिए, कभी हमारा हो तो, अपना नहीं हमारा भी हो, कभी सर को चेंज करके बकरा का सर लगा दिया जाए, बाई चांस मेकअप में कैसे दिखेंगे, किसके पास बैठने के लिए, कोई सभा में जाने के लिए, कभी ट्रैवलिंग करने के लिए, कभी फोटो खींचने के लिए, अब होगा फिट होंगे नहीं। अरे कोई फोटो खींचने जाता है तो चार बार थोड़ा मुंह को सेंटिंग पेंटिंग करके फिर जो फोटोग्राफर बोलता नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा ये थोड़ा उधर मुस्कुराइए ये बोलो है ना, नहीं तब उस नाप खींचता है, नहीं होता। अब ये सर ही बिल्कुल टोटल बकरा का कर दे, हाँ कभी और ठंडी के समय आएगा कोई कैप बनाएगा, कैसे कैप बनाएगा कौन सा साइज बनाएगा भाई, कोई मुकुट पहनाएगा, कौन सा मुकुट पहनाएगा कैसे अब उनके बेडरूम में उनके पत्नी आएगी उनके पास रहेगी तो कैसे उनके साथ बातचीत करे बकरे, कैसे उनके साथ आलिंगन में कैसे करे है ना, नहीं बड़ा तो उनको बड़ा, वो घर से निकल नहीं रहे थे, बड़े बड़े सभा में मीटिंग में बुला रहे थे, बोले यज्ञ करके आने के बाद घर से ना निकले, इतने उनको अफंडेड फील हुआ, बोला जीत गया, शंकर जी ने कृपा करके जिला तो दिए, लेकिन ये क्या कर दिए, बकरा का सर इसी में रहना पड़ेगा जिंदगी भर पता नहीं कितने अपमान, इतने भारी अपमान महसूस है, हे बड़ा पोस्ट बोड़ा लेकिन हे बकरे वाले सर। और सर बकरे का है मतलब जो भाषा भाषा से निकलेगा तो वही स्वर से निकलेगा, तो इतने इतने अपमानित महसूस कर रहे थे। एक दिन उनसे घर से निकल गए, घर से निकल करके जंगल में जा करके तपस्या में बैठ गए, बोले इतने उनको अपमान महसूस हो रहा था तब करने बैठे। तब का लक्ष्य क्या था कि ये शरीर जाए मुझे फिर अपना शरीर मिले, मैं जैसे दक्ष प्रजापति जैसे राजा जैसे राजकुमार जैसे मेरे ऐसे शरीर था जो जैसे मेरे सौंदर्य था जो देख करके सभी तुष्ट हो जाते अभिभूत हो जाते थे, मेरा ऐसे तेज था ये मुझे मिल जाए ये बकरा वाला सर क्या करूं। तो तप करने बैठा, भागवत में कहता है पहले वाले श्लोक में कल सुने भी होंगे शायद, उन्होंने स्वयंभू मन्वंतर से तपस्या शुरू किया, पांच मन्वंतर काल तक तप किया। एक मन्वंतर काल होता है 71,000 चतुर्युग, अब 5 मन्वंतर, 5 मन्वंतर तक तप किया, अब 60 मन्वंतर में उनको जन्म हुआ। उनको भी जो जप कर रहा था तभी भगवान प्रसन्न हुए, बहुत सब प्रसन्न हुए, बहुत हुए प्रसन्न वरदान दिए, बोले ओके ओके काम हो जाएगा काम हो जाएगा। तब जन्म हुआ तो कैसे जन्म हुआ ये भी देखिए, ये प्रसंग अभी जो चल रहा है। एक ही लड़का पैदा हुआ जिसका माँ तो एक था लेकिन बाप कितने थे, 10, 10 in 1, 10 बाप के एक बेटा और एक ही माँ से। और वो जो पिताजी थे उनके साधारण पिता थे नहीं, वो 10,000 साल तक एक एक समुद्र पानी के नीचे तप किए थे, समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तक तप करके, और वो तपस्या करने का मंत्र भगवान रुद्र से ही प्राप्त किए थे। और वो तप के माध्यम से भगवान को प्रसन्न के भगवान साक्षात पानी के अंदर उनके सामने प्रकट हुए, उनको वरदान दिए, बोले बेटो मैं बहुत प्रसन्न हूं आप इतने यूनाइटेड है, 10 होने पर भी आपस में इतने सौहार्द है, आपस में इतने यूनिटी है, इतने प्रेम है, आपके तपस्या के बल से प्रभावित नहीं हुआ, आपके जो एकता है इसी कारण से मैं आपको प्रसन्न होकर आया हूं, और इतने आपके एकता है कि आपको 10 को शादी करेंगे तो 10 पत्नी जरूरत नहीं, एक ही पत्नी में काम चला जाता। कभी कभी हम सुनते हैं ये कंबाइंड फैमिली हमारा है, क्या है हम 5-7 भाई है लेकिन अभी तक एक किचन चल रहा है, इसी को मान बोलते जिनका रसोई एक है उसको बोलते हैं बाप रे बाप, इस युग में भी एक ही रसोई में 6-7 परिवार खाते हैं, हाँ घर अलग अलग है बेडरूम अलग अलग है लेकिन रसोई एक ही है, एक साथ में बनता है, सब मिलकर खाते हैं। हमारा तो यहाँ एक किचन में होता है, 5 लोग खाते हैं, कौन से बड़े, लेकिन इतको बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन कभी ऐसा सुना कि ऐसे कंबाइन फैमिली है एक पत्नी से काम चल गया सारे भाइयों का? हो सकता है? असंभव, असंभव है। लेकिन यहाँ देखिए संभव, हम सुन रहे हैं कि द्वापर में पंच पांडव के एक पत्नी थे, लेकिन फिर भी अपना अलग अलग पत्नी थे, ऐसा बात नहीं, ये तो एक थे लेकिन अलग भी थे। लेकिन इस प्रचेताओं के केस में नथिंग एल्स, दसों प्रचेताओं इतने तेजस्वी प्रभावशाली, भगवान के साक्षात शक्ति तप सिद्ध होकर के एक ही, उसका नाम क्या, मारीसा, मारीसा को शादी की एक पत्नी के साथ, वो आपने सारे तपोबल, आपने सारे पावर को उसी में इन्वेस्ट किए जिसमें पुत्र एक हुआ। भाई जब इतने हाई मटेरियल जाए उसमें प्रोडक्शन तो इतना पावरफुल होगा ही, तो इसलिए दक्ष जब निकला इतने पावरफुल था, तेजस तेजस्वी नाम हम भगवान गीता में कहते हैं, जितने तेजस्वी बुद्धि बुद्धिमता अस्मिंग बड़म बड़बता चा हम, भगवान कहते हैं कि जितने बुद्धिमान है सभी के बुद्धि तो मैं हूँ, जितने बलशाली हैं उनके बल भी मैं हूँ, जितने तेजस्वी पुरुष हैं उनके तेज भी मैं ही हूँ। तेज शब्द का अर्थ समझते हैं क्या होता है? तेज शब्द का अर्थ है अपर को पराभव करने का सामर्थ्य। आपसे छोड़ करके दूसरे जो व्यक्ति आपके सामने हैं उनको किसी भी प्रकार से उनको पराभूत कर दिए, अभिभूत कर दिए अपने सामर्थ्य जो है, इसी को कहते हैं तेज। ऐसे उनके तेज था, जितने उपस्थित थे देवगण ऋषि सबको अभिभूत कर डाले, क्योंकि कितने भावशाली है, दो दो बार। अब उसमें आगे, अब ये तो खत्म हो गया, आगे आप पढ़ेंगे छठा स्कंद में उनके बाद फिर आएगा, छठा स्कंद के पांचवा छठा चौथा चतुर्थ पंचम अध्याय में शायद आएगा, यही दक्ष प्रजापति काम जन्म हुए, बाकी स्टॉप हो गया, बाकी दूसरे चैप्टर शुरू हो जाएगा। तभी फिर जब परीक्षित पूछेंगे सुखदेव बोलेंगे वो जो दक्ष था ना, जो उनके मारीसा के गर्भ से एक लड़का दसे पिताजी के वहां से पैदा हुआ, वो तो इतने पावरफुल था, उनको भी सब बोले बेटो अब आप प्रजा उत्पन्न करो, भगवान के वरदान भी था। सारे पिताजी लोग भी बोले बोले जाओ संसार में कुछ नहीं है, हमारे पिताजी भी चले गए निवृत्ति मार्ग में, हम सब निवृत्ति मार्ग में, तू आके बेटा पैदा हुआ, तू बेटा अब प्रजा उत्पन्न करो। अब ब्रह्मा जी ने उनको आकर पोस्ट भी दे दिए और परमिशन दे दिए, सारे अथॉरिटाइज दे, तब ये सब पोस्ट पोजिशन पा करके उस दक्ष ने दोबारा तपस्या करने जाएगा। भगवान कहते हैं इसी प्रसंग में कि तपस्या मेरे हृदय है, तपस्या क्या है, मेरे हृदय है, तप मेरा हृदय है। तो हर काम के सफलता के लिए क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तपस्या के बिना कोई कार्य साधन हो सकता, ये पहले जमाने में राक्षसों को मसूर लोग पता था कि तपोबल महाबल, बल ही सचमुच तपस्या के बल ही बल होता है, ना तो जिम खाने में जा करके अना अना बेकार कुछ खा पान करके बल प्राप्त करेंगे, ये सब कोई बल नहीं है, बल तो वही होता है तपस्या के बल, तो इसलिए तपस्या कर। तो उन्होंने तप किया था, लेकिन एक बात ध्यान देने के बाद, कितने तप करो, कितने ऑस्टेरिटी करो, कितने बड़े तेज पावर पोस्ट पोजिशन पदवी प्राप्त कर लो, लेकिन एक बार जो वैष्णव पद को प्राप्त नहीं कर पाया कि उनको अपमानित कर दिया और उनसे माफी मांग भी लिया, लेकिन मन में उसको ठीक से बैठा नहीं पाया, तो उसके बीज उखड़ेगा नहीं। ये उन्होंने शंकर जी का अपराध किया था, तो परिणाम उनको होगा गला कटा, जो भी मरा मर करके जो हुआ, फिर बकरा के सिर में उनको मिला, मिल करके माफी मांगा, दोबारा किया, पोस्ट पोजिशन मिला, लेकिन फिर भी शंकर जी की कृपा से उनको क्या मिला, दक्ष बना, लेकिन बकरा हेड मिला, बकरी हेड में उसको शंकर जी की कृपा का एहसान नहीं हुआ, जिंदा तो मिला सब मिला, बोलता कि शंकर जी ने क्या किया, दिए तो दिए, सर दे दिए बकरा का, इसी में अपमानित होता था, मतलब शंकर जी के कृपा को अच्छा नहीं मानता था, जबकि उनको सर्वसार करके मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना, वो बोल नहीं रहा था, किसी को मन में बड़ा उनका लोट था, इसी के कारण तप किया और पांच मन्वंतर काल तक तपस्या किया, लेकिन मन से ये जब वैष्णव के प्रति थोड़ा सा 1% आधा % द्वेष रह गया, वो नहीं मिटा, गया नहीं, भले प्राप्ति हो गया, ब्रह्मा के समान ऐश्वर्य पोस्ट पदवी मिल गया, इतने बड़े तेज निकला कि सभियों को अभिभूत कर डाले, लेकिन वो गड़बड़ी मिटा नहीं ये सबके पावज, जिसके कारण वही दक्ष अभी अशकनी को शादी करके 10,000 लड़का पैदा किया, और जल स्थल आकाश भर दिया, काम नहीं हुआ, फिर तप किया, वो आएगा षट स्कंद में दक्ष ने, जब तप प्रजा उत्पन्न करके देखा बन नहीं रहा काम, फिर तपस्या करने जाएगा, भगवान आए हंस गुह प्रार्थना, भागवत में बड़े प्रसिद्ध प्रार्थना है दक्ष प्रजापति का, हंस गुह वही दक्ष डबल जन्म जिसका हुआ है, ये ट्रिपल जन्म माना जाएगा तीसरी बार में, वो हंस गुह प्रार्थना किया, भगवान को प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के बाद भी क्योंकि शंकर जी के प्रति द्वेष था, उसको उन्होंने भली प्रकार नहीं मिठाया था, इसीलिए उनका हृदय शुद्धि नहीं हुआ, दोबारा इतने बड़े पावर लेकर के संतान उत्पन्न किया, प्रथमतः हरियास्व 10,000 लड़का पैदा किया एक सेट में, नारद जी ने उनको निभक्त में जन करा दिए, सेकंड बहुत गुस्सा हुआ जो भी का सेकंड 1,000 उनको भी, तो इसी के कारण नारद जी को इतने गाली दिया, इतने गाली दिया, क्यों नारद जैसे महा कितने बड़े उच्च कोटि के भक्त, भगवान के मन के अवतार, भगवान के मन है नारद, लेकिन इनको इतने गाली दिया, जबकि सीनियर है नारद जी के समान, तभी कहते तीसरी बार जानता था नारद जी की महिमा, लेकिन फिर भी क्योंकि विद्वेष छोड़ता नहीं है, इसी के कारण इतने जन्म के बाद इतने हजारों हजारों करोड़ साल तप करके तीन तीन बार भगवान के दर्शन पा करके आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करके सब कुछ ब्रह्मा जैसे शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य तेज प्राप्त कर भी फिर भी मन में विद्वेष नहीं गया, नारद जी गाली दे दी, गाली दिया कि भरी सभा में ऐसे गाली दी, 8 श्लोक बड़े कटुक्ति किए नारद जी के प्रति, और नारद जी भरे पब्लिक में सारे गाली की चुपचाप सुन करके इति बाढ़ ठीक है थैंक यू ठीक है ओके नो प्रॉब्लम ना थैंक यू मुझे अच्छा मिला जो आप अभिशाप दिए आई एक्सेप्टेड इट नाइसली। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं एतावान साधुवादम इति, साधुता केवल इसी को ही कहा जाता है, यही है साधुता। क्या साधुता है कि जो नारद जी ने तितिक्षेश्वर तितिक्षतेश्वर स्वयं आपका अंदर पूर्ण सामर्थ्य है प्रतिकार करने का, बदला लेने का फुल पावर पोटेंसी है, लेकिन फिर भी किसी के इतर लोग भी जो आपके समान है आपको अपमान कर दे भरी सभा में, इस अपमान को सर्वसमर्थ होते हुए भी सहन कर जाना, यही इतावान इति साधुता, साधुवाद इति, इसी को ही साधुता कहा जाता है और कोई साधु। भागवत में भगवान कपिल देव साधु लक्षण वर्णन इसी को कहे तितिक्षा। भगवान चैतन्य महाप्रभु अगर बोले कोई भजन करना चाहता है साधु बनना चाहते वो भी त्रिनादपि सहिष्णु, वही सहनशीलता सबसे प्रथम केवल इसी का ही साधुता पहचान है, एतावान इति साधुवाद, यही साधुवाद, यही साधुता है। तो जिनको सहन कर लेना, क्या ये सहन नहीं कर पाया, शंकर जी की कृपा से बकरा का सर तो मिला ही सही, लेकिन उसको सहन नहीं किया अपमान को, नहीं मैं कैसे, और भगवान को देखिए, भगवान नारायण जो लक्ष्मीपति है, जिनके सौंदर्य कंदर पकोटी कमनीय विशेष शोभम है, उनको उस भृगु ब्राह्मण भिकमंगे ने घर में घुस करके बेडरूम में लात मारा उनके छाती में, और इस जो पैर का लात के स्टाम्प को करोड़ों युग आज भी 60 नहीं पहनते हैं, दिखाते हैं दुनिया को, देखो वो मुझे लात मारा था, स्टाम्प लगा हुआ है, ये मेरे स्टाम्प लगा हुआ है करोड़ों युग पर्यंत रख, इसलिए 60 नहीं पहनते। भगवान बोलते नहीं ये मिट जाएगा, मुझे लात मारा था, मैं उनके लात खाया हूँ, दुनिया के लोग मुझे बोलते हैं मैं संसार के पालनहार हूँ, सबके पालन पोषक रक्षक हूँ, लेकिन मैं इतने निकम्मा निलटा हूँ कि मुझे भृगु ब्राह्मण ने घर में घुस करके लात मारा था, ये देखिए प्रमाण, क्या भाव, क्या गुण है भगवान, और इसी गुण के गुणी होते हैं उनके अपने आदमी, उनजन हरिजन जो होते हैं नारद जैसे, भली प्रकार से उनको कटु वाक्य में भरी सभा में उनको गाली गलौज से अपमानित किया, नारद जी बड़े हंसी खुशी से ले लिए। कभी प्रश्न उठता है जब उन्हें भेंट हुआ नारद जी गाली देने गुस्सा होता, नारद जी चले जी चल पड़ते, गाड़ी उनके पास स्टार्ट था, उनके जो वाहन ऑलवेज स्टार्ट रहता है, इमीडिएट हाई पिकअप लेकर चले जाते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लेकिन उनका सामने खड़े क्यों रहे, देखे के सामने इतनी उनको गाली दिलाए। बोलते हैं ये नारद जी की अद्भुत कृपा है, साधुओं का ये भी साधुता गुण है, क्योंकि नारद जी सोचे मैं तो जो किया तो किया, मैं तो उनका बुरा तो नहीं किया, अच्छा ही तो, लेकिन उनके मंदिर में मन में मेरा प्रति जो विद्वेष है, जो क्रोध है, अगर मैं चला जाऊंगा क्रोध जाएगा नहीं, उसका अंदर रहेगा फिर, तो उसको मैं सारे निकाल दूं, तो क्रोध सारे निकल जाएगा तो उनको फिर रिपेंटेंस होगा, उसको वो महसूस करेगा तो क्या होगा, रिपेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चाताप होगा, पश्चाताप होगा, शायद आगे चलकर फिर साधु बन सकता है। उनको फिर पश्चाताप तक लाने के लिए उनके सामने खड़े रहे चुपचाप, सारे गाली की सुने, सुन करके हजम कर दिए, सहन कर दिए, यही है साधु। बोले सब सुन लिया, जितना सारे भी सब निकल दिया ना, हो गया ना सर यहाँ, ओके थैंक यू। तो वो भी सोचा क्या मैं इतनी भली बुरी गाली दिया कि कुछ भी नहीं फर्क पड़ा उसको। तब मन में सोचेगा जा करके, देखिए वैष्णव के प्रति विद्वेष भाव आप कोई तपस्या से नहीं कट सकता, केवल कोई साधु वैष्णव की कृपा से ही कटेगा। एक काली मुझे प्रास कोई मैसेज आया था, किसी ने एक सत्य घटना बता रहा था कि एक व्यक्ति थे, जाजावर महाराज का स्टोरी उन्हें बता रहा था, बोला कि वो एक भक्त आया, उनका एक अंगूठी में कुछ बीमार हो गया, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर पास जाकर दिखाया, कई डॉक्टर पास जाकर फाइनली सर्जन देखे, बोले आपका अंदर ये हो गया, उसको काटना पड़ेगा, नहीं काटेगा तो आप जाएगा चढ़ गया, तो सारे चेक फेक करके देख दिए, अंगूठी तो काटना ही पड़ेगा, फिक्स हो गया डेट, आप एक नेक्स्ट वीक में आओ, उसको काट कर फेंक देना पड़ेगा। तो उन्होंने आया तो सन्यासी श्री जाजावर जी उनके पास आकर पहुँचा, मैं बोला जाता हूँ, उंगली काटना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, हाथ से काटना पड़ेगा। उन्हें क्यों क्या हो गया ना, पता नहीं, इतने दिन से दर्द कर रहा था, दवाई पानी कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, अभी बोलते हैं कि डॉक्टर बोला काटना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले अच्छा पैसा बोला डॉक्टर, तो कितना दिन से, कई दिन से, मुझे बता ना आपको क्या बताऊँ ना, कोई अपने भक्तों के प्रति अपराध किया, क्या किसी मारपीट किया किसी के साथ, याद किया याद किया, हाँ एक बार तो किया था, उनका पता नहीं झगड़ा किया। बोले ऐसा करो, लगता है उसी के परिणाम है, जाओ उनसे माफ़ी मांग लो, बाद में ऑपरेशन के लिए जाना। बोला सही में, तो उनका बात मान करके गया, जाकर ढूंढा जिस गांव से झगड़ा कर, जाकर ढूंढा तो जा चुके थे, उनके देहांत हो चुका था, आकर बोला तो है ही नहीं, तो गुजर गए। अच्छा वो गुजर गए, माफी में, तो ऐसा करो कब गुजरे ना हो गया ना, जाओ जहाँ पे उनका समाधि हुआ है वहाँ पर बैठ करके कम से कम कुछ घंटा रो और प्रार्थना करो, गुड़गुड़ा सर पीट करके उनके समाधि के साथ, वो जा करके किया और देखा कि बोला ऑपरेशन अंगूठी कट जाए, हाथ निकाम हो जाएगा, जा करके कुछ घंटा यहाँ रो पीट करके सर पीट करके माफ़ी मांगा, और दूसरे दिन उनका अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के पास आया, ऑपरेशन रेडी होकर आया था, अंगूठी कटेगा करके, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले फिर चेकअप करते हैं, और दोबारा टेस्ट किया, टेस्ट करके डॉक्टर हैरान हो गया, ऑपरेशन थिएटर में अपॉइंटमेंट था, हैरान हो गया, बोला आप क्या दवाई खाया, क्या किया ना, क्या ना, बिल्कुल ठीक है ही नहीं, ऑपरेशन करना जरूरत नहीं, इट्स ओके, कोई क्या दवाई खाए बताओ तो सही, ना कोई दवाई नहीं खाया ना, नहीं कैसे हो सकता, पिछले हफ्ता मैंने देखा था ये सीरियस कंडीशन था, अभी कुछ भी नहीं है। तब उनको तो समझ में नहीं आया, बोला हाँ एक काम तो किया था, जाकर उनके समाधि में सर पिट कर रोया था जिनके बोला, तो डॉक्टरों की समझ आए हैं इतने पवार हो, एक थपका अंदर सारे कीटाणु गायब, बिल्कुल ऑपरेशन करना जरूरत नहीं अभी, ये प्रभाव देखिए। और डॉक्टर भी इस बात सुन करके उनके अंदर भी भक्ति जागृत हुआ। ऐसे ऐसे प्रभाव भले आप माने न माने, देखे अनसुने, लेकिन वो है, ये शास्त्र प्रमाण देखिए, इतने करके भी तीन तीन जन्म लेकर कितनी तपश्चर्या, कितने प्रभाव ऐश्वर्य तेज प्राप्त करके भी उस विद्वेष धोता नहीं है, उसी को धोने के लिए नारद जी स्वयं गाली खाकर उनके सामने खड़े हुए अपमानित होकर के उनको सुधार किए। अगर इस प्रकार कोई नहीं करता तो कितने भयानक है वैष्णव विद्वेष, इसमें जान सकते हैं, है ना नहीं। भले कोई कितने तेजस्वी हो जाए, कितने पावर पोस्ट पोजिशन आ जाए, लेकिन अगर इसी कृपा को ठीक से एहसान नहीं कर पाया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए भगवत कृपा हमेशा भक्त कृपा के अनुगामिनी है। हरे कृष्ण।